ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದಿಕಿ ನಿತೈ ಗೌರ್ ಪ್ರೇಮ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಜಯ ಗೋಪೀಗಣವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಗೋಪೀಗಣವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಸದಾನಂದನ 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 ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram
ప్రభుపాదకి జయం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టతర సుతైసి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ మహారాజ్ కి నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి అనంత కోటి వైష్ణవ వృందకి శ్రీ రాధాగిరిధరి భగవానికి జయ జగన్నాథ బలదేవి సుభద్రాజీకి సమవేత భక్త వృందకి శ్రీల ప్రభుపాదకి నితైగోర్ ప్రేమ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తత్ జయాద్ ముదీరయే నష్టప్రాయే సుభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమా శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టకీ.
శ్రీమద్భాగవతం కంటూ 10 అధ్యాయ 10 శ్లోక 22 పఢేంగే.
వాసుదేవస్య సన్నిధ్యం లబ్ధ్వా దివ దివ్య సరచ్యతే ధృతే స్వలోకతం భూయ లబ్ధ భక్తి భవిష్యత. వాసుదేవస్య సన్నిధ్యం లబ్ధ్వా దివ్య సరచ్యతే భృతే స్వలోకతం భూయ లబ్ధ భక్తి భవిష్యతే.
वासुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा दिव्य सरोच्यते भृते स्वलभतां भूय लब्धभक्ति भविष्यत। इसके पहले दो श्लोक है, मैं पढ़ लूंगा। यदि मो लोकपालस्य पुत्र भूत्वा तम प्लुतो न विवस्वसामात्मनं बीजानीत सुदुर्मदो अतो हर्तस्तावरतं स्यातं नैवं यथा पुनः स्मृति स्यानामत्प्रसादेन तत्रापि मद अनुग्रहात। आज के श्लोक के इस शब्दार्थ ऐसे हैं, बोलिए। यत क्योंकि इमो, ये दोनों तरुण देवता लोकपालस्य महान देवता कुबेर के पुत्र भूत्वा होकर तमप्लुतो तमगुण में बुरी तरह से मग्न न नहीं विवाससं बिना किसी वस्त्र के बुरी तरह नंगे आत्मनम अपने शरीर को बीजानित जानते हुए कि नंगे हैं सुदुर्मदो मिथ्या अहंकार के कारण अत्यंत पति अतः इसलिए अहर्त पात्र है स्थावरतम वृक्ष जैसे गतिहीनता स्यातम हो जाए न नहीं एवं इस तरह यथा जिस तरह पुनः फिर स्मृति याद स्यात् बनी रहे मत प्रसादेन मेरी कृपा से तथापि सरी तत्रपि इसके अतिरिक्त मत अनुग्रहान मेरे विशेष अनुग्रह से वासुदेवस्य भगवान का सान्निध्यम संगति या साक्षात्कार लब्ध्वा प्राप्त कर दिव्य शरद यते ब्रुते देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद सोलकतम स्वर्गलोक में रहने की इच्छा भूय पुनः लब्ध भक्ति अपने भक्ति को पुनः प्राप्त करके भविष्यत हो जाएंगे। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। ये दोनों युवक नल कुबेर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नंगे होकर भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो नंगे हैं। अतः वृक्ष की तरह रहने वाले वृक्ष नंगे होते हैं किंतु चेतना नहीं होते। इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यही उनके वही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उदार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपनी विगत पाप कर्म की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। तात्पर्य, वृक्ष में चेतना नहीं होती क्योंकि जब काटा जाता है तो उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता, परंतु नारद मुनि चाहते थे कि नलकुबेर तथा मणिग्रीव की चेतना स्मृति बनी रहे, जिससे वृक्ष जीवन से मुक्ति पाने के बाद भी वो उस परिस्थिति को न भूल सके जिसके कारण उन्हें दंडित होना पड़ा था। अतः उन पर विशेष कृपा करने के लिए नारद मुनि ने ऐसा किया कि मुक्त होने के बाद वो वृंदावन के कृष्ण का दर्शन कर सके और अपनी सुप्त भक्ति को फिर से प्राप्त कर सके। स्वर्गलोक का एक दिन हमारे 6 महीना के बराबर होता है। यदि भी स्वर्ग के देवता भोगी हैं, किंतु वो सब भक्त हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। व्यक्ति 2 प्रकार का होते हैं, देव तथा असुर। असुरगण कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं, आसुरम भावम आश्रित, किंतु देवता नहीं भूलते। दो भूत स्वर्ग लोकेस्मिन् देव आसुरे च विष्णु भक्त स्मृत देव आसुरस्तत् दिव यथ पद्मप्राण। शुद्ध भक्त तथा कर्मी भक्त कर्ममिश्र भक्त का अंतर इस प्रकार है। शुद्ध भक्त भौतिक भोग के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जबकि कर्ममिश्र भक्त इस जगत का सर्वोपरि भोक्ता बनने के लिए भक्त बनता है। भगवान की भक्ति के कारण प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से भक्त शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से अकलुषित रहता है। अन्य अभिलाष शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम। कर्म मिश्र भक्ति से मनुष्य स्वर्ग लोक जाता है, ज्ञान मिश्र भक्ति से ब्रह्म तेज को प्राप्त होता है और योग मिश्र भक्ति से वो भगवान के सर्वशक्तिमता से परिचित होता है। किंतु शुद्ध भक्त कर्म ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं रहती क्योंकि वो एकमात्र प्रेम व्यापार से युक्त होती है। इसीलिए भक्त की मुक्ति मात्र मुक्ति नहीं अपितु विमुक्ति कहलाती है। और 5 प्रकार की मुक्तियां सायुज्य सारूप्य सालुक्य साष्टी तथा समीप्य को पार कर जाती है। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध सेवा में अपने को लगाता है। अनुकूल्य कृष्ण भक्ति उत्तम देवता के रूप में उस स्वर्ग में जन्म लेने से अधिकाधिक शुद्ध भक्त बनने का तथा भगवतम जाने का अवसर प्राप्त होता है। नारद मुनि ने प्रकारांतर से मणिग्रीव तथा नलकुबर को अपने तथाकथित श्राप से बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं राशिसपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणं रघुनाथनितं तं सजीवं सदयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता शिविशाखानितं स हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो यहाँ पर नारद मुनि के कुबेर जी के जो दो पुत्र थे ये दोनों पुत्र के प्रति आज के श्लोक के द्वारा बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये नारद मुनि अपने वाणी के रूप में देवताओं के जो उन्माद पुत्र जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे और इंद्रिय तृप्ति से विरक्त करा करके उनको भक्ति की स्वाद देने के लिए अपने वाणी द्वारा कृपा किए। नारद मुनि अपने वाणी के माध्यम से कृपा की। ऐसे जो गुरु होते हैं शुद्ध भक्त भगवान के, वो अपने विशेष करके अपने वाणी के माध्यम से आश्रितों के ऊपर आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं। और यदि योग्य पात्र हो तो फिर वो वाणी का आशीर्वाद यदि ले सकने के लिए योग्य हो तो बड़ी अल्प के बड़ी कम समय के भीतर वो कृष्ण को दर्शन करने के लिए योग्य बन सकता है। जिस प्रकार कुबेर जी के जो पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर स्वीकार कर लिए अधम योनि को, जो वृक्ष योनि होते हैं वो तमोगुण के होते हैं, उनमें कोई ज्ञान चेतना नहीं होती है, फिर भी इस प्रकार का साप को स्वीकार कर लिए ये जानते हुए, क्योंकि देवता लोग सामान्य नहीं होते हैं, वो बड़े सुकृति होने के बाद देव समाज में एक जीवात्मा को स्थान मिलता है, भले वो इंद्र तृप्ति में लगे जाते हैं लेकिन कभी भगवान को भूलते नहीं है, तो ये साप प्राप्त होने के बाद भी तो वो लोगों के भीतर ये अंदर से एक प्रकार का सुनाई मिला, श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की सुनाई मिला कि ये नारद मुनि का साप अकारण नहीं है, बेकार नहीं जाएगा और निश्चित वो हमें कृष्ण को दर्शन कराएगा। इस प्रकार आशा को रखते हुए उन्होंने ये साप को स्वीकार कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है भक्त सामने वाला ऐसा समर्थ होता है, उनके भीतर भी ये सामर्थ्य है सामने वाला का आने वाला जो उसको रोक सके, फिर भी परीक्षित महाराज के जैसे सामर्थ्यवान पुरुष होने के बाद भी उनके भीतर परीक्षित महाराज के भीतर ये शक्ति सामर्थ्य थी, फिर भी उन्होंने ब्राह्मण का साप स्वीकार कर लिए। परीक्षित महाराज इतने बड़े भक्त थे, माँ के गर्भ में उन्होंने भगवत दर्शन हुआ। और जो व्यक्ति को भगवत दर्शन हुआ है तो वो कोई साधारण नहीं है, तो उनको ब्रह्म साप इस प्रकार इतना भारी नहीं हो जाता उनके लिए। फिर भी उन्होंने ब्रह्म वाक्य को सारा समाज के सामने के आदर्श के रूप में रूप देने के लिए उन्होंने वो साप को स्वीकार किया। ठीक उसी प्रकार ये मणिग्रीव और नल कुबेर तो नारद जी का साप को इस प्रकार स्वीकार कर लिया। और आज के प्रसंग के द्वारा नारद जी ये बताना चाहते हैं, एक साधु का एक भक्त का किसी प्रकार की हमारे ऊपर आशीर्वाद हो, साप हो, वो भक्तों के लिए, वो सामान्य सामने वालों के लिए और मंगल होता है। और सही बात है, साधु संघ से ही एक बद्ध जी के बद्ध जीवों के भीतर स्वरूप ज्ञान उदय होती है, फिर बंधन कट जाता है, संसार बंधन कट जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ भक्तों की संग करे तो फिर अनर्थ निवृत्ति और भजन में प्रवेश कर जाता है। और भजन प्रवेश का जो फल है प्रेम, वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, और भागवत में भी ये बात कहा गया है, जनस्य कृष्णस्य विमुखस्य। वर्तमान सारा समाज कृष्ण की ओर से मोह मोड़ लिया है। वर्तमान प्राय प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की ओर से मोह मोड़ बैठा है। इसलिए क्या होता है, परिणाम क्या होती है, दैवाद अधर्मशीलस्य, वो माया में चला जाता है। जैसे हम कृष्ण को भूल जाते हैं, जो मुहूर्त में हम कृष्ण को भूल जाते हैं, हमारे अति करीब के लोग हमको दूर दूर कर देते हैं, हमारे अति निकट के लोग हमको छे छे कर देते हैं, हमारे परिवार के लोग हमको जो लोग इतने सम्मान देते हैं, जितने आदर देते हैं, वही लोग जैसे हमें कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, कृष्ण से अलग हो जाते, कृष्ण से अपने को हम अलग कर लेते हैं, हमारे अति करीब के लोग पराय के रूप में सामने दिख पड़ते हैं, पराय के रूप में बन जाते हैं। दैवात अधर्मशीलस्य, जैसे दूसरा क्या होती है, जैसे हमें कृष्ण को भूल जाते हैं, तुरंत हम माया के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। दैवात माया के द्वारा हमें प्रभावित हो जाते हैं। और जैसे एक व्यक्ति माया में हो जाता है, वो नाना प्रकार की अधर्म कार्य में लिप्त हो जाता है, इसलिए दुखी है, सुदुखी स्तस्य। दैवाद अधर्मशीलस्य सुदुखी स्तस्य। ये सारे संसार के लोग इतने दुखी है, ऐसे दुखी लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए समाज, गोष्ठी, देश विदेश, सारा विश्व में भव्यानि जनार्दनस्य, ये भगवान के भक्त सारा संसार में घूमते रहते हैं। क्या करते हैं, सारा संसार में वो लोग घूमते रहते हैं, किसीलिए ना, ऐसे दुखी लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए चरंती मतलब भ्रमण करते हैं। अनुग्रहाय चरंती नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान के भक्त लोग सारा संसार भर विचरण करते हैं। यहाँ पर दिखा गया है कुबेर जी के दो पुत्र जब नंगे कुछ स्त्रियों के साथ ऐसे खड़े हुए थे, तो नारद जी सोचे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग स्वर्ग के रहने वाले हैं, ये नरक जैसे लोग के आचरण कर रहे हैं। ये बहुत ही जगह एक प्रकार का नरक है। एक बार कोई भक्त ने पूछा महाराज जी को कि महाराज हम लोग नरक में जा सकते हैं प्रचार करने के लिए, तो महाराज तुरंत जवाब दिया, आप लोग तो नरक में प्रचार कर ही रहे हो, ये बहुत ही जगह एक प्रकार का नरक है। भक्त लोग नरक में प्रचार करते हैं, जहां पर इंद्रिय तृप्ति इतने प्राधान्य है, ऐसे जहां पर इंद्रिय तृप्ति होती है सहज भगवान को भूल जाते हैं। और ऐसे जगह में भगवान को याद दिलाना, ऐसे व्यक्ति को भगवान को याद दिलाना बड़े ही दुष्कर विषय है। फिर भी भक्तों लोग अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा फिर ऐसे
इंद्रिय तृप्ति में रमने वाला व्यक्ति का हृदय को बदल देते हैं। ये भक्ति में ये भक्ति का सामर्थ्य है और ये शुद्ध भक्त का शक्ति है। इस प्रकार जब प्रभुपाद जी इंग्लैंड में एक बार प्रचार कर रहे थे, एक बार एक व्यक्ति सामने से आया और पूछा, ओ स्वामी जी, आपका धर्म में कुछ नरक के विषय में बताया गया है? तो प्रभुपाद जी कहने लगे, आपका देश तो एक नरक है, ये इंग्लैंड तो एक प्रकार का नरक है और मैं आपका देश में प्रचार करने के लिए आया हूं। तो सामने वाला जैसे सुना, हाँ, वो हक्का पक्का रह गया, ये स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, हमारे देश को नरक कह रहे हैं? हाँ, तो प्रभुपाद जी बोले, देखिए, आपका देश में हमेशा बादल, आकाश में बादल छा रहती है, यहाँ पर हमेशा बारिश होती है, कितने ठंडी है, और आप भारत में जाओ, सूर्य कैसे चमकता है। तो अब आप लोग भारत जाओ, सूर्य कैसे चमकता है। तो व्यक्ति को जो प्रभुपाद जी ऐसे कह रहे थे, तो व्यक्ति को सूझ नहीं रहा था कुछ प्रभुपाद जी को जवाब देने के लिए। तो प्रभुपाद जी उनका परेशानी को समझ गए और समझ करके प्रभुपाद जी बोले, ठीक है, आपका सभ्यता इतना उन्नत है, आप लोग को आगे आना चाहिए। और दूसरे दिन इंग्लैंड के लंदन के न्यूज़पेपर में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में आ गया कि ये स्वामी जी हमारा देश को नरक कह रहे हैं। अखबार में छाप करके आ गया कि ये स्वामी जी हमारे देश को नरक कह रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है, तो प्रभुपाद जी जाकर के ये नरक में भी वैकुंठ को खड़ा कर दिया। कहने का अर्थ है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये स्कंद जो है एक प्रकार का वैकुंठ है। अब प्रभुपाद जी इंग्लैंड गए, अमेरिका में गए, वो नरक के भीतर वो वैकुंठ को स्थापित कर दिए। जिस प्रकार ये समग्र भौतिक जगत के भीतर ये निरारुण एक आध्यात्मिक स्थान है, ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ इंग्लैंड अमेरिका के भीतर एक एक वैकुंठ को खड़ा कर दिया। मतलब एक वैकुंठ की वातावरण ला दिए। ऐसे प्रभुपाद जी एक ऐसे ऐसे जगह में एक वैकुंठ की वातावरण को स्थापित कर दिए। और श्रीमद् भागवतम भी यही कहता है, एक शुद्ध भक्त जहां पर जाता है उस स्थान पवित्र तीर्थ बन जाता है। वह अपने हृदय में भगवान को धारण करने के कारण वो जो जगह में जाता है, वो नरक कोई पे जाए, वो जगह तीर्थ बन जाती है, वो जगह वैकुंठ बन जाती है, क्योंकि भगवान के चरण से सारे तीर्थ का उत्पत्ति है और भगवान जहां होते हैं वही जगह वैकुंठ होती है। और आज के प्रसंग के द्वारा प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिसके पास धन होती है वो व्यक्ति वो धन को तीन जगह में लगाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, धनाढ्य व्यक्ति जिसके पास ज्यादा धन होता है, ऐसे धनवान व्यक्ति तीन जगह में अपने धन को इस्तेमाल करता है, एक स्त्री में, एक शराब में, एक तीसरा है जुआ में। स्त्री, शराब और जुआ, ये तीन जगह में धनवान व्यक्ति अपने धन को इस्तेमाल करता है। और चाणक्य पंडित बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति के भीतर धन होता है और धन प्राप्त होने के साथ साथ भी दान देने की इच्छा होती है, और एक व्यक्ति को अच्छे भोजन प्राप्त हो और अच्छे भोजन प्राप्त होने के साथ साथ भी उसको खा करके उनको उनके भीतर पचाने की शक्ति हो, तो ऐसे इस प्रकार का बातें अनेक तपस्या से वो व्यक्ति को प्राप्त होती है। अनेक तप करने के बाद एक व्यक्ति को धन प्राप्त होती है और धन प्राप्त होने के साथ साथ भी दान देने की उनके भीतर इच्छा होती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें धन प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें धन प्राप्त हो, और धन तो प्राप्त होता है लेकिन धन का सही सदुपयोग दान में ही है। धन का सही इस्तेमाल जब वो दान देता है तब जाके वो धन का जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है। और पहले अनुवाद में प्रभुपाद यही भी बताते हैं, जब धन आता है, मान सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा जब व्यक्ति के जीवन में आता है, तो फिर वो अंधा हो जाता है। जैसे कुबेर जी के पुत्र इतने देव समाज के लोग होते हुए भी एक संत को दर्शन करने के बाद भी अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के बल पर वो अंधे बन गए, देख करके भी वो देख नहीं पाए। और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं ये प्रतिष्ठा स्वपच रमणी, मतलब स्वपच मतलब कुत्ता का मांस जो खाता है, कुत्ता का मांस कौन खाता है, एक चंडाल खाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं जो व्यक्ति के भीतर प्रतिष्ठा की लालसा, ये आखिष्टज है, ये आखिर है, सब तो पार कर जाते हैं लेकिन लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये इतने जल्दी मिटते नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं एक भक्त के भीतर से विषय वासना, एक भक्त विषय को त्याग देता है लेकिन ये प्रतिष्ठा की जो लालसा है वो इतने जल्दी मिटती नहीं है। ये प्रतिष्ठा सारे अनर्थ की जड़ है, ये प्रतिष्ठा से कपटता कुटिलता उत्पन्न होती है। एक साधक, एक निष्पाप, एक निर्लिप्त, एक भगवत भक्त ना, एक दाता, एक वैष्णव, ये परिचय दे करके वो प्रतिष्ठा की आशा रखते हैं। और सारे अनर्थ तो चले जाते हैं लेकिन ये प्रतिष्ठा ये इतने जल्दी बुझती नहीं है। ये प्रतिष्ठा की जो अग्नि है ये इतने जल्दी ठंडा नहीं, समीप नहीं होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं ये स्वपच रमणी, जो व्यक्ति प्रतिष्ठा की आशा करता है उनके हृदय के भीतर प्रतिष्ठा सा दृष्टवा स्वपच रमणी में हृदय नटत मतलब नृत्य करती है। जो व्यक्ति के भीतर ये प्रतिष्ठा रूपी कुत्ता का मांस खाने वाले के स्त्री, कुत्ता के रमणी मतलब स्त्री, स्वपच रमणी मतलब कुत्ता के मांस खाने वाले के स्त्री, जो भक्त के जो व्यक्ति के हृदय में नृत्य में हृदय नटत हृदय के भीतर नृत्य करती है वहां पर साधु प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकती। मतलब भगवत प्रेम वो भक्त के भीतर उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी सलाह देते हैं तो ये चीज को दूर भगाना है। उपाय क्या है ना, साधु संग, साधु एक सही भक्तों का सेवन से, उनका स्मरण से ये जो स्वपच रमणी, जो कुत्ता का मांस खाने वाले जो स्त्री है ये हमारा हृदय से भाग सकती है और ऐसे साधुओं के संग से वो भक्तों के भीतर ब्रज प्रेम प्रवेश कर सकती है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं साधु भक्तों संगे साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि है भक्ति फल प्रेम है संसार जाय क्षय। साधु का संग से कृष्ण के भक्त से यदि हमारा श्रद्धा हो गया तो भक्ति फल प्रेम होय, भक्ति का जो फल है प्रेम होय संसार जाय क्षय। कल छोड़े परसों में भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़ी उत्सव मनाना है और एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के मंडली को लेकर गंगा का किनारे किनारे जा रहे थे गोद्रुम द्वीप जब जाके पहुंचे गोद्रुम द्वीप जब जाके पहुंचे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ तो वहां पर गोद्रुम द्वीप में एक गादी गच्छा गोदह गादी गच्छा करके गांव है तो गांव में भक्त लोग बहुत जोर से कीर्तन कर रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु देखे तो और जोर जोर से कीर्तन करने लगे तो महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर कीर्तन में शामिल हो गए और जोर से कीर्तन किए। कीर्तन करने के बाद वो गांव में एक भक्त थे महाप्रभु को अपने घर में बुलाए और जो प्रसाद देना था उनको दिए। प्रसाद सेवन करने के बाद भगवान गौरांग वो बगल में पास में एक झिल्ली थी वो झिल्ली के पास गए भक्तों को लेकर प्रसाद के बाद। जब झिल्ली के पास गए तो ये भक्त ने कहा कि प्रभु ये झिल्ली के भीतर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है। हमारे गाय जब पानी पीने के लिए आती है बहुत हंबाती है। ये बात जैसे सुने चैतन्य महाप्रभु वो जोर जोर से कीर्तन करने लगे। और जैसे कीर्तन करने लगे सच में ये झिल्ली के भीतर, झिल्ली समझते हैं पानी जा रही है, झिल्ली के भीतर जो एक मगरमच्छ छुपा हुआ था वो झिल्ली के भीतर से बाहर आया, आकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण में अपने मुंह को रखा। जैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण को छुआ, जैसे भगवान का चरण का स्पर्श हुआ, तुरंत वो मगरमच्छ एक देव शिशु में परिवर्तित हो गया। था मगरमच्छ, जैसे भगवान का चरण का स्पर्श किया वो तुरंत एक देव शिशु में देवताओं का पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। अपरिवर्तित होकर के हाथ जोड़ करके भगवान को रोते रोते प्रार्थना किया कि प्रभु मैं कितने जन्मों से, कई समयों से ये साधुओं की श्राप से यहाँ पे पड़ा था। अरे देवताओं के जो पुत्र था वो रोते रोते कहने लगा कि प्रभु एक दिन वृंदावन में काम्यवन में दुर्वासा जी सोए हुए थे, तो मैं उस समय बालक था, छोटा था, तो बालक शरारती स्वभाव को लेकर मैं गया दुर्वासा मुनि जी के पास और जाकर के उनका चोटी को काट दी। दुर्वासा जी सोए थे, मैं गया उनका चोटी को काट दी और जैसे काट दी तुरंत दुर्वासा जी उठ पड़े और मुझे कोपित होकर के साप दे दिए, जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ, छुपे छुपे आते हो पकड़ने के लिए, मगरमच्छ छुप छुप के आता है पकड़ता है। कौन है वो अगस्त्य जी साप दे दिए थे जो इंद्रदुम्न महाराज हाथी को पकड़ा। इंद्रदुम्न महाराज जब हाथी बन गए थे तो पानी के भीतर जो गंधर्व भूहू गंधर्व था तो पकड़ने के लिए छुप छुप के आके पकड़ा ना, सॉरी हु गंधर्व पकड़ा था कोई ऋषि के चरण को जो ऋषि स्नान कर रहे थे, तो ऋषि ने साफ दे दिए थे जाओ तुम स्नान करते समय मेरे चरण को पकड़ रहे तुम मगरमच्छ बन जाओ। उसी प्रकार दुर्वासा जी के साप से ये देवताओं का जो पुत्र था वो मगरमच्छ बन गया था। अब मगरमच्छ बन करके वो झिल्ली में पड़ा था और इस प्रकार का चैतन्य महाप्रभु को कहा। और जब दुर्वासा जी इस प्रकार का साप दे दिए तो मैं बहुत रोया और उनके चरण में गिरा और बड़े विनय होकर के जब मैं उनको बोला तो उन्होंने मुझे बताया था कि चार युग तक तुम ये मगरमच्छ के शरीर में रहोगे, लेकिन कलयुग में सचिनंदन जब आएंगे तो उनकी कृपा से आपका उद्धार हो सकता है और कृपावश आप अपने भक्तों के साथ यहाँ पर पधारे हो और आपकी कृपा के द्वारा आज मुझे मगरमच्छ शरीर से मुक्ति मिला और कृपा करके मुझे अनुमति दे दीजिए मैं मेरा स्थान को लौट जाऊं। इस प्रकार कह करके भगवान गौरांग के चैतन्य महाप्रभु के परिक्रमा किया और अपने स्थान में लौट गया। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु भी ये कहते हैं मोहत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति न है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं वहां पर कि मोहत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति न है। कोई मोहत के कृपा के बिना और कोई कर्म के ही संसार के कर्म के द्वारा हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं हमें तो साधुओं की संग करना है, तो देखा जाए तो इस्कन एक समुद्र जैसे है। इस्कन आज के समय में इतने विशाल बन गया है तो हमें किस किस का संग करें। तो वहां पर कहा जाता है रेस्पेक्ट ऑल और रिलेशन फ्यू और फॉलो वन। वहां पर बताया जाता है इसकन इतने बड़ी संस्था है, इतने की भक्त समाज इतने विशाल है, तो हमें किस किस का संग करें, कौन कैसे कैसे भक्तों की संग करें। तो वहां पर जवाब यह है कि रेस्पेक्ट ऑल, सबको आदर दो, और रिलेशन फ्यू, और संबंध थोड़े भक्तों के साथ बनाए रखो,
लेकिन आपका गुरु का फॉलो करो,
फॉलोवान, ये यहां पर जवाब है। तो एक बार एक भक्त ने पूछा महाराज जी को कि महाराज आपका संग तो मिल नहीं रहा है। तो महाराज जवाब दिए हैं कि संग दो प्रकार का होता है, वाणी और बापू। तो वहां पर निरंजन स्वामी महाराज उपस्थित थे। तो हिजी होली ने श्रावणा स्वामी महाराज निरंजन स्वामी महाराज पूछे कि आप बताइए प्रभुपाद जी का संग आपको कितना हुआ। तो निरंजन स्वामी महाराज बोले ऑलवेज लेस, बहुत कम। फिर बाद में बोले जीरो, बिल्कुल ही नहीं है। महाराज बोले कि जीरो, बिल्कुल मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रभुपाद जी डायरेक्ट का संग मुझे कभी भी नहीं मिला है। ये बात सही है, ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संग प्रभुपाद जी कभी मिले ही नहीं उनके जीवन में कभी भी। और कोई कोई भक्त हुए हैं, बस कोई भक्तों को प्रभुपाद जी देखा केवल एक बार मुस्कराया, और कोई कोई भक्तों को देखे एक बार उनको एक गार्लैंड दे दिया, कोई एक भक्त को देखे एक फूल दे दिया, बस इतना ही उनके जीवन में, इतना ही प्रभुपाद जी के संग इतना ही हुआ। क्या आज वो लोग प्रभुपाद जी का लाभ संग नहीं लिए? क्या आज वो लोग प्रभुपाद जी को प्रसन्न नहीं कर रहे? बड़े प्रामाणिकता से, प्रमाण से वो लोग आज प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर रहे हैं। हाँ, बड़े प्रामाणिकता से वो लोग आज प्रभुपाद जी के लिए सक्रिय रूप से प्रभुपाद जी के लिए कार्य कर रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस था, तो एक भक्त उठा, माइक लिया और सारे भक्त सामने बैठे हैं, और वो भक्त ने कहे आप जो भी कुछ बोलो, प्रभुपाद जी जब थे वो वातावरण वो समय अलग ही था, आज ये हो ही नहीं सकता। और भक्त ने कहे प्रभुपाद जी के समय वो अद्भुत अलग प्रकार का, आज वो है ही नहीं। तो सारे भक्त जो थे बैठे थे उसे बेवड़ हो गए, मोहित हो गए, क्या बोल रहे हैं ऐसा कैसे। तो भक्त ने बोले क्या प्रभुपाद जी उनके विग्रह में नहीं है? क्या प्रभुपाद जी अपने पुस्तक किताबों में नहीं है? फिर कैसे समझा जाए, है भी नहीं भी। तो वहां पर राजनाथ स्वामी महाराज जवाब दिए ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व ये बड़े सीक्रेट है, ये बड़ा गुह्य है। गुरु के साथ शिष्य का जो संबंध है ये बड़े, उसको समझना मुश्किल है, ये बड़े छुपा हुआ रहस्य होता है, उनको समझना मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी एक बार ऐसे बैठे हुए थे, उनके शिष्य लोग उनको मसाज कर रहे थे। और वो जगह इतने मतलब आवृत था, कबर था, तो वहां पर और कोई जा नहीं पा रहे थे, चारों तरफ बाउंड्री था और एक गेट लगाया हुआ था, कोई नहीं आ पा रहे थे। तो प्रभुपाद जी के एक दो शिष्य वहां पर बैठ करके प्रभुपाद जी का मसाज कर रहे थे। तो अचानक बिल्ली तो गेट के भीतर किसी भी प्रकार घुस गया, और घुस करके सीधा आया प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी के पास आकर के प्रभुपाद जी के शरीर के साथ अपने घर इसको घिसेटा। तो शिष्य लोग क्या कर रहा है, तो उसको जबरदस्ती पकड़ करके लेकर के छोड़ दिया, बाउंड्री के बाहर छोड़ दिया। तो छोड़ तो दिया, तो फिर ये बिल्ली घुस करके आया, फिर प्रभुपाद जी के शरीर में घिसाटा आपस में अपने शरीर को, जैसे कि वो सोच रहा था, बोल रहा था अपने इस प्रकार आचरण के द्वारा, वो प्रभुपाद जी को शिष्य को जवाब दे रहा था, देखो खाली तुम लोग के लिए प्रभुपाद जी नहीं है, हमारे जैसे पशु समाज के लिए भी प्रभुपाद जी आए हैं। ऐसे शुद्ध भक्त तो खाली मनुष्य समाज के लिए नहीं आता है, पेड़ पौधों को भी तारने के लिए, ऐसे तमोगुण में ऐसे जीव जंतुओं को भी उद्धार करने के लिए शुद्ध भक्त, वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ का प्रिय व्यक्ति खाली मनुष्य समाज के कल्याण के लिए नहीं आता है, ऐसे पशु समाज पेड़ पौधे को उद्धार करने के लिए भी आता है। जिस प्रकार श्यामानंद प्रभु हाँ जो राधा रानी के बहुत करीब थे, सेवा कुंज में उनको राधा रानी का नुपुर मिला, जो एक बार अपने भक्तों के साथ जा रहे थे, एक मगरमच्छ पड़ा हुआ था और श्यामानंद प्रभु सोचे अरे तुम कौन सा जन्म का गहित कर्म के वजह से ये मगरमच्छ के शरीर धारण किए हो, लेकिन आज से यदि आप हरि हरिनाम स्वीकार करो और हाँ इस प्रकार का कुकर्म न करो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो ये सुन करके वो मगरमच्छ जो पड़ा हुआ था नदी के किनारे में श्यामानंद प्रभु का चरण को स्पर्श किया और सीधा उस जल के भीतर प्रवेश कर गया। कहने का अर्थ ये है जो ये लब्ध्वा आज के श्लोकों के द्वारा नारद मुनि कहते हैं कि लब्ध्वा कहां गया, लब्ध्वा वासुदेवस्य सान्निध्य लब्ध्वा, कहते हैं नारद जी तुम लोगों को तो मेरे साप के कारण से पेड़ जुनी प्राप्त होगा, फिर भी ये पेड़ जुनी में मेरे कृपा से, नारद जी यहां पर बताते हैं कि मेरे कृपा से पेड़ शरीर में होने के बाद भी तुम लोगों की ऐसी स्मृति बने रहेगा कि तुम्हारे गहित कर्म के कदर्ज्य कर्म के कारण इस प्रकार का योनि में जाना हुआ और ये स्मृति बने रहने के कारण मेरे कृपा से दूसरी बात तुमको होगा तुम्हारे जीवन में होगा कि कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगा। सही बात में सही बात यह है, ये कुबेर जी के जो जो पुत्र दो पुत्र इतने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे, कोई आशा नहीं दिख रहा था कि उनको कृष्ण प्राप्त होंगे, लेकिन नारद जी जैसे संतों की कृपा से बड़े आसानी से बड़ी बहुत कम समय के भीतर वो लोग को कृष्ण प्राप्त हो गए। ठीक उसी प्रकार हमारा कोई औकात नहीं है, हमारा स्थिति इतनी घृणित है तो कई पिछले जन्म का कोई सुकृति कोई पुण्य की पूंजी से हमें एक शुद्ध भक्त प्राप्त हुए हैं। यदि उनके संगति सही सही उठाया जाए तो कृष्ण डेरी नहीं है, कृष्ण के प्राप्त कृष्ण का चरण कमल दर्शन कोई दूर नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं यदि कोई व्यक्ति दो बात करे, प्रभुपाद जी बताते हैं कोई व्यक्ति कोई अयोग्य से अयोग्य भी कोई भक्त अपने को समझे मैं तो अयोग्य हूँ बढ़ते बताया गया है हरिनाम संकीर्तन ही कृष्ण का दर्शन कराता है कलयुग में, मेरे भीतर कोई शक्ति नहीं है कि मैं जाके लोगों के सामने दो बात कहूँ, मेरे भीतर कोई क्षमता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्तियों को भी आश्वासन देते हैं ठीक है तुम्हारे भीतर एक कोई ऐसे कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये वचन देता हूं यदि तुम तुम्हारे जीवन के भीतर दो बात करोगे तो इसी जीवन में आप आपका जीवन को सफल बना सकते हो। तो दो चीज क्या है ना, जिह्वा के द्वारा प्रसाद लो और जिह्वा के द्वारा कृष्ण नाम लो। ये जिह्वा के द्वारा दो काम करो, प्रभुपाद जी बताते हैं ये जिह्वा के द्वारा यदि कोई व्यक्ति दो काम करे, कृष्ण प्रसाद ले और कृष्ण का नाम को जपे, बड़े कम समय के भीतर वो कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। तो प्रभुपाद जी आज अपने प्रवचन में यही कह रहे हैं तो और कोई उपाय नहीं है कलयुग में, कर्म ज्ञान योग ये साधन के द्वारा हमें कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। और भगवान स्वयं भी कहते हैं उद्धव कोई व्यक्ति कर्म के द्वारा ज्ञान के द्वारा ध्यान योग उपाय के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, न साधयति थी योग सांख्य धर्म उद्धव, हे उद्धव तुम्हारे द्वारा मैं बताता हूं ये संसार को और कोई उपाय नहीं केवल भक्ति, भक्ति के द्वारा एक व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। और ये भक्ति का आरंभ ये भक्ति का शुरू कहां होती है कब होती है ना साधु संग, ये भक्ति का शुरू साधु संग से होती है। और ये साधु संग प्रभुपाद जी के कृपा से बड़े आसानी से हमें प्राप्त है। यदि अपराध रहित होकर विषय वासना को थोड़ा सा धक्का लगा के बाहर निकाल के यदि हमें ये किया करें तो प्रभुपाद जी का जो वाणी है और निश्चित सफल होगा। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? कुछ प्रश्न है, कमेंट्स है? हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की। प्रेमानंदे।